ओम शांति। त्याग एक बहुत बड़ी शक्ति है और जिसमें त्याग करने की शक्ति आ जाती है वह तो बहुत महान बन जाता है। कई लोग सोचते हैं त्याग करना कायरता है, जिस प्रकार कई लोग सोचते हैं कि सहन करना कायरता है। वे कहते हैं हम क्यों सहन करें, हमने किसका क्या बिगाड़ा है जो हम सहन करें, इसलिए हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। वैसे ही त्याग करना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। त्याग का अर्थ क्या है अगर हम इस पर विचार करें, व्यक्ति वस्तु वैभव परिस्थिति आदि ये जो कुछ इस संसार में है उस पर अपना अधिकार समाप्त करना, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। कई बार तो हम इस पर अपना अधिकार समाप्त करते ही हैं, लेकिन स्व इच्छा से खुशी से किसी के सुख के खातिर अगर हम त्याग करते हैं, समाज के कल्याण के अर्थ त्याग करते हैं, तो वह त्याग सतोगुणी त्याग कहलाता है। लेकिन कई बार मजबूरी से त्याग या भय से त्याग, स्वार्थवश त्याग या जिद के कारण भी त्याग करते हैं, तब फिर ये त्याग रजोगुणी या तमोगुणी त्याग कहलाता है। मान लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हैं और कोई चोर आपकी जेब काट लेता है, तो यह मजबूरी का त्याग हो गया, आपकी जेब कट गई, आपके पैसे चले गए, अर्थात आपकी तरफ से तो त्याग हो ही गया, करना ही पड़ता है, कितना भी आप कोशिश करें उस व्यक्ति को पकड़ने की, लेकिन कहां आजकल ये व्यक्ति मिल पाते हैं। तो यह मजबूरी का त्याग है। कई बार भय के कारण भी त्याग करना पड़ता है। आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपके तन पर गहने हैं, घड़ी है, और कोई आपको बंदूक दिखाता है कि आप ये सब हमें दे दीजिए नहीं तो हम आपको मार डालेंगे, तो आप अपनी जीवन को बचाने के कारण सोचते हैं कि जान बची लाखों पाए, ये धन गया तो कोई बड़ी बात नहीं, और आप उस धन को या जेवर को दे देते हो, त्याग कर देते हो। अब ये हुआ भय के कारण त्याग। आप चाहते नहीं हो लेकिन जबरदस्ती है, डर लगता है, तो आप त्याग कर लेते हो। कई बार व्यक्ति स्वार्थ में आकर भी त्याग करता है। वो समझता है कि अगर मैंने ये थोड़ा सा त्याग किया तो मुझे बहुत कुछ प्राप्ति होगी, तो उस बड़ी प्राप्ति को देख करके स्वार्थ रखकर त्याग करता है, तो ये भी रजोगुणी त्याग कहलाएगा। कई बार ऐसे भी होता है कि व्यक्ति जिद में आकर भी त्याग कर लेता है। मान लीजिए उसने किसी ने अपने दोस्त को कहा कि मैं 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा तो भी मैं बहुत अच्छा चल सकता हूं, और दूसरा दोस्त उसे कहे ये तो हो ही नहीं सकता है, तुम खाए बिना रह नहीं सकते हो। अब वो जिद पर अड़ जाता है और वो कहता है मैं 4 दिन तक भोजन स्वीकार नहीं करूंगा, तो जिद में आकर के वो त्याग करता है। तो ये जितने भी त्याग हैं, ये सब मजबूरी, भय, स्वार्थ या जिद के कारण त्याग, ये रजोगुणी या तमोगुणी त्याग है। कई बार अपनी कमजोरी या औरों की कमजोरी के कारण भी व्यक्ति त्याग करता है। याद आता है एक सन्यासी का मिसाल हमें। एक सन्यासी ने इसलिए अपनी पत्नी और घर बार का त्याग किया क्योंकि हर महीने उसकी पत्नी एक नई साड़ी उसे मांगती थी, और फलस्वरूप उसने सोचा कि ये सब झंझट है, इनसे त्याग करना सहज है, चलो सन्यासी बन जाओ। अपनी भी कमजोरी थी और उसकी पत्नी की भी कमजोरी थी, तो कमजोरी के वश होकर के त्याग कर लेना, ये भी कोई सतोगुणी त्याग नहीं माना जाएगा। वास्तव में त्याग की बहुत बड़ी गहराई है। हमें त्याग किसका करना है? वस्तुओं का तो त्याग कर लिया, लेकिन अगर मन उसी वस्तु के इच्छा रखे हुए संकल्प कर रहा है तो वास्तव में वो त्याग नहीं माना जाएगा, क्योंकि त्याग का सही अर्थ तब होगा जब उस त्याग का भी त्याग हो। अगर कोई व्यक्ति त्याग करता है और उसके मन में ये संकल्प चलते हैं कि मैंने इतना त्याग किया, मैंने कोई कम त्याग किया क्या, तो मैंने यह त्याग किया, ये संकल्प आना भी त्याग नहीं है। तो त्याग का भी त्याग चाहिए, तब कहेंगे कि सचमुच त्याग किया। और जब इतना त्याग हो जाता है तो वास्तव में वो त्याग तो भाग्य है, क्योंकि सच्चा सुख पाने का वो द्वार है। हम किसी के मोहवश उसके अधीन हो जाते हैं, लोभवश वस्तु के अधीन हो जाते हैं, और हम सचमुच स्व इच्छा से उसका त्याग करते हैं, तो ये भाग्य की निशानी है, ये कष्ट की निशानी नहीं है, क्योंकि उसके आधार से आत्मा को सच्चा सुख मिल सकता है। तो वास्तव में सच्चा त्याग हम किसको कहेंगे? सच्चा त्याग या सर्वोत्तम त्याग उसे ही कहेंगे जिससे सच्चा सुख उस त्याग के बाद अनुभव हो। तो हम कह सकते हैं कि मन, वचन और कर्म द्वारा विकारों का त्याग, बुराइयों का त्याग, ये सबसे बड़ा त्याग है। वस्तु का त्याग, व्यक्ति का त्याग, वैभव का त्याग, ये त्याग तो अवश्य है, लेकिन अगर उस त्याग के बाद दुख की अनुभूति होती है तो वह सच्चा त्याग नहीं है। लेकिन जब हम विकारों का त्याग करते हैं तो मन में सच्ची शांति का अनुभव होता है, और यही शांति की अनुभूति भाग्य की निशानी है। तो हम कह सकते हैं कि यही त्याग सबसे ऊंचा त्याग है। वास्तव में अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचें तो जिसने अपनी वासनाओं का त्याग किया वो बहुत बड़ा त्यागी है, उसे ही महान आत्मा भी कहा जाता है। क्रोधवश बदला लेने की भावना या हिंसा की भावना, उसका त्याग करना, ये कितना बड़ा त्याग है। आज अगर मेरे अंदर में आ रहा है कि मैं इसकी हत्या कर लूं, क्रोधवश ये संकल्प मन में उत्पन्न होता है, और फिर हम सोचते हैं नहीं, ऐसा सोच मुझे नहीं करना चाहिए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने उस हिंसा का त्याग किया या बदला लेने की भावना का त्याग किया, तो ये त्याग बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा, क्योंकि इस त्याग के फलस्वरूप हमने समाज में शांति प्रदान की। तो शांति प्रदान करने वाला अवश्य महान आत्मा कहलाता है, तो उसका भाग्य उससे अवश्य मिलता है। तो सदा यही हम याद रखें कि बदला नहीं लेना है, लेकिन हमको बदल कर दिखाना है। वास्तव में ये भी एक बड़ा त्याग है, बदला लेना ये बड़ी बात नहीं है। वैर रखना, नफरत करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, ये तो बहुत सहज है। आत्मा देह अभिमान के कारण इन्हीं विकारों के वशीभूत बहुत जल्दी हो सकती है, लेकिन स्वचिंतन के माध्यम से, आत्मज्ञान के आधार से, परमात्मा की याद के आधार से, अगर हम इन व्यसनों का, विकारों का, बुराइयों का त्याग कर सकते हैं, तो वह त्याग सत्वगुणी त्याग या सर्व श्रेष्ठ त्याग कहा जाता है। लोभवश इंसान बेईमानी करता है, हेराफेरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, मिलावट करता है। अगर व्यक्ति ये सोचे कि मुझे इनका त्याग करना है, समाज के खातिर इन बुराइयों का त्याग करना है, अर्थात लोभ का त्याग करना है, तो वह त्याग अवश्य ऊंचा माना जाएगा। इसी प्रकार मैंपन का त्याग, जो हम सुबह से लेकर रात्रि तक मैं कितनी बार ये शब्द कहते हैं, अभिमान में आकर के कहते हैं, तो यह मैंपन का त्याग भी एक बहुत बड़ा त्याग है। तो इन बुराइयों का, विकारों का अगर हम त्याग कर लेते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए त्याग को एक शक्ति कहा गया है। त्याग एक बहुत बड़ा बल है। जिस त्याग के बल से आप भी शक्तिशाली बन सकते हो और आपसे कई आत्माएं प्रेरणा ले सकती है। वास्तव में राजयोग के माध्यम से आत्मा को त्याग करने की शक्ति आती है। मन और बुद्धि के अंदर श्रेष्ठ चिंतन चलता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। जब शुद्ध आत्मा हूं ये चिंतन होता है, तो उसके फलस्वरूप अशुद्ध चिंतन अपने आप समाप्त हो जाता है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये इतना सुंदर चिंतन है जिससे बुराइयां सहज खत्म हो जाती। तो त्याग की शक्ति एक इतनी ऊंची शक्ति है, जिस शक्ति के आधार से हम ईश्वर से सच्ची प्रीत रख सकते हैं। वास्तव में जिसने ईश्वर से सच्ची प्रीत रखी है, उसके लिए त्याग करना बहुत सहज है, क्योंकि या तो वस्तुओं से प्रीत होगी या तो ईश्वर से प्रीत होगी। वस्तुओं से प्रीत तो एक दिन हमें दोहा दे सकती है, क्योंकि वस्तु विनाशी है, लेकिन ईश्वर अविनाशी है। तो ईश्वर से प्रीत रखना अर्थात अविनाशी प्रीत रखना, और यह अविनाशी प्रीत हमें सदा सुख का अनुभव कराती है। परमात्मा संपूर्ण पवित्र है, संपूर्ण निर्विकारी है, संपूर्ण पावन है। उनकी महिमा हर बात में संपूर्णता से तुली जाती है, अर्थात सागर से उनकी महिमा होती है। जिस प्रकार सागर इतना गहरा है, इतना विशाल है, इसी प्रकार परमात्मा भी अपने गुणों में संपन्न है और संपूर्ण है। तो जब ईश्वर से सच्ची लगन लग जाती, उनसे सच्ची प्रीत हो जाती, तो फिर इस संसार की वस्तुएं तो विनाशी वस्तुएं क्षण भंगुर लगती है और उनका त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं लगती। वास्तव में राजयोग हमें ये नहीं सिखाता कि इनका त्याग करके आप जंगल में चले जाएं। ये भी तो कायरता होगी, ये भी पलायनवाद होगा। लेकिन राजयोग तो हमें यह शिक्षा देता है कि इनके साथ रहें, इनका उपभोग करते रहें, इनका सुख भी अनुभव करते रहें, लेकिन ये सब करते हुए भी उसमें फंसे नहीं, अर्थात मन से त्याग हो, स्थूल रीति से त्याग हो और मन से त्याग न हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है और न ही ये सच्चा त्याग है। लेकिन सतोगुणी त्याग तो तब माना जाएगा जब सब कुछ हमारे सामने हो, वैभव भी हमारे सामने हो, व्यक्ति भी हमारे सामने हो, वस्तु भी हमारे सामने हो, लेकिन वह सब कुछ होते हुए भी हमारी आंख उसमें न डूबे, उसके प्रति लोभ न पैदा हो, उसके प्रति लालच न आए, उसमें मोह न हो, उसके अंदर वासना न जाए, यही सच्चा त्याग माना जाएगा। तो सच्चा राजयोगी त्यागी है, वह तपस्वी है और उसके अंदर सच्ची सेवा करने की लगन है। तो जहां त्याग है, जहां तपस्या है, जहां सच्ची सेवा है, तो कह सकते हैं कि वही व्यक्ति सच्चा मानव है, क्योंकि वह समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो क्यों नहीं आज से ही हम अपने अंदर यह दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि मुझे त्याग करना है। केवल स्थूल रूप से त्याग नहीं, परंतु मन से त्याग, खुशी से त्याग, स्व इच्छा से त्याग, अर्थात दूसरों की सेवा अर्थ त्याग। हम केवल अपना सुख ही नहीं देखें, खुद को सुखी बनाकर अनेकों को दुखी करना, ये कोई सच्चा सुख है ही नहीं। वास्तव में औरों के सुख में हमारा सुख समाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि औरों को जब हम सुख दे सकेंगे तब उनकी दुआएं प्राप्त कर सकेंगे और वो ही सच्चा सुख का स्वरूप होगा। तो आज से हम ये दृढ़ संकल्प करें, अपने अंदर प्रतिज्ञा करें कि मुझे रोज किसी न किसी व्यसन, विकार, बुराई, अशुद्धि का त्याग करना है। और हम आपको विश्वास से कह सकते हैं कि अगर आपने यह दृढ़ संकल्प किया तो उस त्याग के आधार से आपका भाग्य बहुत उज्जवल बनेगा। आपको यह महसूसता ही नहीं होगी कि आपने कुछ त्याग किया भी है। कई बार अनेक इच्छाएं होती है और अगर एक इच्छा की अपूर्ति हुई तो हमें लगता है हमने बहुत बड़ा त्याग किया। लेकिन जब हमारी इच्छाएं ही समाप्त हो गई और भगवान से सच्ची प्रीत हो गई, उनसे सच्ची लगन लग गई, तो उनके द्वारा जो आत्मा को प्राप्ति होती है वो इतनी ऊंची प्राप्ति है जिसकी भेंट में इच्छाएं तो अनुभव होती ही नहीं। परमात्मा अपने आप ही सर्व प्राप्ति करा देता है। इसीलिए कहा गया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। हम ईश्वर से जन्म जन्म भीख मांगते आए, हे प्रभु शांति दो, सुख दो, खुशी दो, शक्ति दो। हम मांगते ही आए भिखारी बन करके, लेकिन हम भूल गए कि इनका साधन है ही त्याग, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं छोड़ो तो छूटो। अगर कोई पक्षी किसी डाल पर बैठकर यही चिल्लाए कि मुझे कोई छुड़ाओ, तो वो कभी भी उड़ नहीं सकता। लेकिन उसको खुद छोड़ना होगा, खुद अपने पंख खोलने होंगे, तब ही वो छूट सकता है। तो हम मनुष्य आत्माएं भी त्याग की बातें तो अवश्य करते हैं, और हम समझते भी हैं कि त्याग से ही भाग्य बनता है, लेकिन त्याग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ईश्वर से सच्ची प्रीत नहीं है। जिसकी ईश्वर से सच्ची प्रीत होगी, उसके लिए त्याग करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जैसे किसी व्यक्ति के लिए प्रीत होती है, तो उसके खातिर कुछ भी त्याग करना सहज लगता है। जो चीज उस प्रिय को पसंद होगी, वही हम अपनी पसंदगी बनाएंगे, क्योंकि उनसे प्रीत है। तो चाहे अपनी पसंदगी कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि उनसे प्रीत है, तो वही चीज को हम भी पसंद करेंगे। ये भी एक त्याग का स्वरूप है। तो अगर हमारा ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर के प्रति सच्चा स्नेह है, सच्ची लगन है, और वह परम पवित्र है, शुद्ध है, पावन है, संपन्न है और संपूर्ण है, तो उनके खातिर अगर हम अपने जीवन में बुराइयों का, व्यसनों का, विकारों का त्याग करते हैं, तो वह त्याग त्याग नहीं लगता। हम अनुभव करते हैं कि भगवान की प्रीत का भाग्य हमें प्राप्त हुआ है, और आत्मा इतना तो अपने आप को भरपूर महसूस करती है। उसे लगता है कि कोई खोई हुई चीज उसे प्राप्त हो गई, जैसे सच्चा रतन उसे प्राप्त हो गया। वास्तव में ये दिव्य गुण हमारे ही गुण थे, हमारी ही ये शक्तियां थी, लेकिन हमने उनको गंवा दिया। किसने लूटा? अगर हम थोड़ा सोचें, तो देह अभिमान ने हमारे गुणों को लूटा, विकारों ने हमारे सुख और शांति को लूटा, तो अब इनका ही फिर से त्याग करना आवश्यक होगा। जैसे आपके घर में कोई नौकर हो, आपकी बहुत अच्छी सेवा करता हो, दिल से सेवा करता हो, बड़ी मेहनत करता हो, लेकिन एक दिन आपको यह पता चल जाता है कि यह नौकर आपका चोर है। वो आपके घर से छोटी छोटी चोरियां करता रहता है, जो शायद आपको भी पता नहीं था। तो जिस दिन आपको यह पता चलता है कि ये नौकर चोर है, आप उस नौकर को एक पल के लिए भी फिर से अपने घर में नहीं रखेंगे, चाहे आपकी उससे कितनी ही प्रीत क्यों न हो, चाहे उसमें कितने भी गुण क्यों न हो, चाहे वो आपको कितना भी सुख क्यों न देता हो, मेहनती क्यों न हो, लेकिन चोर है तो आप उसको कभी नहीं रखेंगे घर में। जब तक पता नहीं था, तब तक तो आप उसको अपना मित्र समझकर, साथी समझकर शायद उसको अपने घर में रखते थे, लेकिन जिस दिन पता चला, उसके बाद आप उनको एक पल के लिए भी नहीं रखेंगे। तो इसी प्रकार इन विकारों का त्याग करना सहज लगेगा, जब हम ये सोचेंगे कि इन्हीं विकारों ने ही आत्मा की सच्ची शक्ति, आत्मा के सच्चे गुणों को नष्ट कर दिया है, आत्मा की सच्ची संपत्ति ही खत्म हो गई। इसीलिए आज कलयुगी दुनिया में हम देख रहे हैं कि चाहे स्थूल वैभव कितने भी क्यों न हो, दुनिया में आकर्षण अनेक क्यों न हो, लेकिन वो सब खोखले लगते हैं। इस प्रकार लगते हैं कि जैसे अभी गए की गए। इमारत कितनी सुंदर क्यों न हो, विशाल क्यों न हो, ऊंची क्यों न हो, लेकिन एक भूकंप आने से ऊंची इमारतें तो सबसे पहले नीचे ढह जाती है, और ऐसे लगता है जैसे ये सब ताश के पत्ते हो। तो जबकि त्याग हमें अंत में करना ही है, तो क्यों नहीं स्व इच्छा से, खुशी से, हम सच्ची दिल से इन बुराइयों का त्याग करें और अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र बना करके परमात्मा के समान बनाएं। तब हमारा ये जीवन सफल होगा और जन्म जन्म सफल बना सकेंगे। तो इन्हीं शक्तियों के साथ साथ अनेक कलाएं भी हैं, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। ओम शांति।